translation. King Parikshit inquired from Shukadeva Goswami, O learned Brahmana, demons are generally sinful, being obsessed with the modes of passion and ignorance. How then could Vritasura have attained such exalted love for the Supreme Personality of Godhead, Narayan?
Anuvad. Raja Parikshit ne Shukadeva Goswami se pucha, हे विद्वान ब्राह्मण, असुर रजो तथा तमो गुणों से आविष्ट होने के कारण सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृतासुर श्री भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका?
This material world, everyone is obsessed with the modes of passion and ignorance. Of course, the word obsessed means mad, going after something with massive fanaticism. That is called obsessed.
Obsessed, जो एक English का शब्द है, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति पूर्ण रूप से मोहित हो जाना.
So in this material world, everyone is obsessed, Prabhupada is writing, with the modes of passion and ignorance.
इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमो गुण से ग्रस्त रहता है.
However, unless one conquers these modes and comes to the platform of goodness,
किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के पद पर नहीं पहुंच जाता, तब तक शुद्ध भक्त
नहीं. There's no chance of one's becoming a pure devotee.
तब तक शुद्ध भक्त नहीं बन सकता.
This is confirmed by Lord Shri Krishna himself in the Bhagavad Gita 7:28.
इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में की है.
Please repeat after me.
कृपया मेरे पीछे दोहराएं.
येषां त्वन्तम्
येषां त्वन्तम् गतं पापम्
जननाम
जननाम
पुण्य
पुण्य
कर्मणाम
कर्मणाम
ते
द्वन्द्व
मोहनिर्मुक्ता भजन्ते
भजन्ते
माम
माम
दृढव्रतः
दृढव्रतः.
Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated, and who are freed from the duality of delusion, engage themselves in my service with determination.
जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं.
So we have to understand that the word eradicated means wiped out, zero. Prabhupada used to say zero. He didn't say Z even. He said zero. Zero. Nothing.
Eradicated, जो English translation में word है, इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण नष्ट होना या शून्य बन जाना.
So whose sins are completely eradicated or wiped out.
तो जब तक किसी के जो पूरे पापमय कार्य होते हैं, वह नष्ट नहीं हो जाते.
Only those persons can attain the platform of pure devotional service.
तो सिर्फ वह व्यक्ति ही शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकता है.
Since Vritasura was among the demons, Maharaj Parikshit wondered how it was possible for him to have become such an exalted devotee.
चूंकि वृतासुर असुर था, अतः महाराज को आश्चर्य हुआ कि वह परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका.
नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव
नरोत्तमं देवं सरस्वतीं
अदौरं मदीयेत् नास्तापुरेषु अभद्रेषु नित्यं
भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी.
So it's a good question, isn't it?
तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, है कि नहीं?
Everybody remember the question, this is Kali Yuga.
तो आप में से कितनों को प्रश्न याद है, ये कलयुग है.
What was the question, Prabhu?
तो क्या प्रश्न पूछा?
What was the question asked by Maharaj Parikshit?
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न किया जब हमने अनुवाद पढ़ा?
How could a demon attain the position of a god? Thank you very much. You have to be very alert in my classes because I may pop a question on you at any moment.
तो आपको मेरी कक्षा में बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि मैं आपकी तरफ कभी भी कोई प्रश्न उछाल सकता हूँ.
So this is a first class question because it's not logical by mundane calculation.
तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि साधारणता देखा जाए तो सामान्य दृष्टि से इलॉजिकल क्वेश्चन.
So before we go any further, I want to point out to you from the harmonium how this is called a stop, how this plug is bent. I want to point out to you.
तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कक्षा में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे हाथ में है ये हारमोनियम का एक प्लग है और मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार मुड़ा.
Lord Vishnu is famous as the maintainer.
जो भगवान विष्णु है वे मेंटेनर के रूप में प्रसिद्ध हैं.
But we see that many times devotees don't even attempt to maintain, but that's tamagun. We have to be careful. Here saying tamagun is demoniac. Maharishi Pariksit is saying tamagun is demoniac. We have to become completely free from this tamagun tendency. It just stated clearly in this verse.
परंतु कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग चीजों को मेंटेन करने में सावधान नहीं होते हैं, तो ये तमोगुण का लक्षण है.
So this bent is called a stop, or the lever that controls the airflow to the harmonium. Bent means tamagun. You must understand this point. We have to learn how to maintain the property of radhika.
तो जो ये इसमें एक बेंट पड़ गया है.
जी जी जी. Speaking of radhika, जय श्री श्री राधे राधे श्याम श्री श्री राधिकृमा की जय, कृष्ण बलरामा की जय श्री.
तो जो ये सुई होती है ये हवा के प्रेशर को रोकती है हारमोनियम में, तो इसमें बेंट पड़ गया है जो साधारणता नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तमोगुण का लक्षण है.
Prabhupada says sometimes repetition is necessary.
श्रीला प्रभुपाद कहते थे कई बार दोहराना आवश्यक होता है.
So I previously declared that Lord Vishnu is famous as the maintainer.
तो मैंने अभी पहले बताया कि जो भगवान विष्णु है वे प्रसिद्ध हैं मेंटेनर के रूप में.
Therefore, we must, on behalf of Lord Vishnu and Guru Parampara, we must maintain the personal property of Radhika. We have to do that, or we are, you know, the word negligent. Otherwise, we are neglecting our duty.
भगवान और गुरु परंपरा को उनके नेतृत्व करते हुए हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम उनके जो प्रॉपर्टी है, जो उनका सामान है, उनका पालन करें. उनकी तरफ हमें असावधान नहीं होना चाहिए.
I started to explain to you yesterday that Prabhupada was impeccable. Impeccable, you know the word impeccable? Nay. In the business world, they say highly attentive to detail, but without making mistake. Impeccable means perfect action, no mistake.
श्रीला प्रभुपाद अपने कार्यों में पूर्ण थे, वह कोई गलती नहीं करते थे और उनके जो छोटे छोटे विस्तार होते थे डिटेल्स में जाकर कार्य करते थे.
Prabhupada did everything impeccably.
श्रीला प्रभुपाद हर चीज को बहुत ही पूर्णता और परफेक्शन के साथ करते थे.
मीन्स फर्स्ट क्लास,
प्रथम श्रेणी का कार्य होता था.
विदाउट मिस्टेक,
बिना किसी गलती के.
इन अ वेरी फाइन हाई क्लास वे,
और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से भी बिल्कुल प्रथम श्रेणी का कार्य होता था.
आई थिंक देयर आर वीडियोज दैट शो.
मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चरित्र हैं.
आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस रॉन्गली, बट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इट एज एन एग्जाम्पल.
तो मैं नहीं चाहता आप इस चीज को गलत तरीके में लें, मैं एक उदाहरण दे रहा था.
Occasionally he would pick his nose. I really don't want you to take this wrongly, but I'm just telling something.
तो जो मैं अभी उदाहरण देना चाह रहा हूँ, कृपया आप इसको गलत रूप से मत लीजिए.
Here we go. He would, if he picked his nose, he did so artfully that it was better than a demigod. I'm serious, you know. It's there on the videos. You can see on the videos.
जब वे अपनी नाक ऊपर करते थे, तो इतना सुंदर होता था कि किसी देवी देवताओं
कि कंपैरिजन तुलना में भी वह बहुत अधिक आश्चर्यजनक होता था. मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चलचित्र में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं.
नॉर्मली सच थिंग्स आर अबॉमिनेबल.
साधारणता दृष्टि से ये सब चीजें बहुत ही गिरी हुई मानी जाती हैं. अबॉमिनेबल.
यस, यू नो इट्स सेम इन हिंदी, सेम मींस डिस्गस्टिंग.
ये बहुत ही मतलब क्रेडिट मानी जाती है.
But when Prabhupada, whatever Prabhupada did was transcendental, totally.
परंतु श्रील प्रभुपाद जो करते थे वे दिव्य था पूर्ण रूप से.
So he expected all his disciples and consequently his followers to do everything the way he did it. In fact, of course, it's impossible. But acharya means that we are supposed to follow in the way that he is doing.
तो वे अपने सभी शिष्यों से यही अपेक्षा रखते थे कि वे उन्हीं की तरह कार्य करें. आचार्य का अर्थ है जो अपने आचरण से सिखाए.
Acharya by definition means setting example.
और आचार्य का अर्थ है कि उदाहरण प्रस्तुत करना.
If guru does not set example, then he's not acharya. I'm sorry.
अगर गुरु अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता तो वह आचार्य नहीं है. वह क्षमा कर दें.
But I want to remind you that acharya does not mean infallible.
मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आचार्य का अर्थ ये नहीं है कि जो अपने पद से बिल्कुल गिरना सकता.
Infallible means cannot make mistake.
जो इनफॉलिबल पर्सन होता है या जो सिद्ध पुरुष होता है वह कोई गलती नहीं करता.
But if somebody is regular guru rather than nitya siddha or eternally liberated guru, if somebody is regular guru, then they might make mistake, but they're say still they cannot be binding. We cannot find fault for that mistake unless they're breaking the regulative principles or something serious, some severe management oversight, then we can try to correct if we have the adhikar for it. Not if we don't have the adhikar, otherwise we'll go down.
अगर कोई गुरु है और वह और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको नित्य सिद्ध होना ही पड़ेगा तभी वह गुरु बनेगा. जो साधारणता जो गुरु होते हैं वह भी गलती कर सकते हैं, परंतु ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि वह नियमों के पालन में ढीले हों या जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो चार नियम है वो पालन ना कर रहे हों या मैनेजमेंट में कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दें. हम तभी उनको करेक्ट कर सकते हैं, परंतु करेक्ट भी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इस चीज का अधिकार हो. हर कोई गुरु को ये सलाह नहीं कर सकता, सलाह नहीं दे सकता.
One of the Prabhus was asking me, so what if there's something that you feel needs to be corrected, then how do you correct it? You see.
तो वह प्रभुजी कहाँ पे हैं जो कल मुझसे प्रश्न कर रहे थे, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि गुरु को कुछ सलाह देनी चाहिए या उनको ठीक मतलब करेक्शन देनी चाहिए.
No, then it was you asked me yesterday. The concept is that you have to correct according to your adhikar. Adhikar means spiritual position.
तो सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति दूसरे को तभी ठीक कर सकता है या उसको करेक्ट कर सकता है जब उसके पास उस चीज का अधिकार हो आध्यात्मिक दृष्टि से.
The etiquette must be observed. Once again, the word impeccable. It must be observed strictly. The etiquette must be strictly observed. Otherwise, aparad. This point we have to understand.
जो वैष्णव शिष्टाचार है उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए बिना किसी गलती के, अन्यथा अपराध हो सकता है.
Because the concept is adosha darshana, and practically every time Madhavananda Prabhu comes here to Punjabi Bagh, he speaks on the subject of adosha darshana.
Adosha darshana. जब भी माधवानंद प्रभु इस मंदिर में आते हैं वे अपनी कक्षाओं में इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमें दूसरों में अवगुण नहीं देखने चाहिए.
Dosha darsha means aversion to fault finding. This is very important, otherwise there may be aparad.
Adosha darsha का अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति में अवगुणों को ना देखना. ये बहुत ही आवश्यक है.
Same time we should not be blind and robotic followers. We should not be blind.
और साथ साथ में हमें अंधविश्वास करके अंधों की तरह फॉलो नहीं करना चाहिए.
If there's some deviation, we should rectify. I mean, by going through authority, not by taking on something that's beyond our adhikar.
अगर कोई अपने पाद से भ्रष्ट होता है, तो हमें निश्चित रूप से ठीक करना चाहिए, परंतु अपने अधिकार के हिसाब से.
I'll give you an example.
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा.
There was a crisis in New York City, New York Temple, in the 1970s when Prabhupada was physically with us.
1970 के दशक में जब श्रीला प्रभुपाद पृथ्वी पर थे तब न्यूयॉर्क के मंदिर में कुछ समस्या थी.
He was a sannyasi.
वे एक सन्यासी थे.
His name was Bali Mardan. He's not active in Krishna consciousness anymore, so you wouldn't know who he is. But he was a big man, the so-called big man at that time. He was GBC.
उस समय एक बहुत वह GBC भी थे और बहुत ही बड़े सन्यासी थे.
Then he, there was some Japanese woman that claimed to be a heiress to the Toyota fortune. Toyota, like Toyota cars, heiress, who would inherit the Toyota fortune. She fraudulently claimed to be from the Toyota family in such a way to suggest that she was worth hundreds of millions or billions of dollars. You understand? By fraud, she made a picture somehow or other that she was an heiress, that she would inherit the Toyota fortune.
तो वहां पे उस समय जापान से एक महिला थी जो जिन्होंने अपना जो चित्र है इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वह जो टोयोटा फैमिली है उस परिवार से टोयोटा परिवार से है जो बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है. टोयोटा की अलग अलग गाड़ियां भी आती हैं और उन्होंने बताया कि जो सारा इसका जो प्रॉपर्टी है वह उनको मिलेगी.
So this Bali Mardan, he was a sannyasi.
तो जो ये व्यक्ति थे ये एक सन्यासी थे.
But because he thought she was worth hundreds of millions or billions of dollars, and so he married this woman.
क्योंकि इन सन्यासी को लगा कि इन महिला के पास कई सौ मिलियन डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है उनके पास आएगी तो इसलिए इन्होंने उनसे विवाह कर लिया.
She was not a real devotee.
वह कोई भक्त नहीं थी.
She just went through a few motions. She wore a sari and pretended to be a devotee.
हालांकि वह महिला साड़ी पहनती थी और इस तरह दिखाती थी कि वह एक भक्त है.
Once she was caught eating chicken.
एक बार उन्हें मांसाहार करते हुए पकड़ा गया.
But after Bali Mardan got married, Prabhupada did not dismiss him from being a member of GBC. He wanted to give him a chance. That's Prabhupada. He wanted to give him a chance to continue with service. Extraordinary mercy. We a very extraordinary circumstance, which is a you could say landmark decision. You know that saying, landmark decision, a precedent whereby Prabhupada allows a sannyasi that had fallen down to continue as GBC just to give him a chance. That's Prabhupada. Otherwise he could have said, okay, you're finished, you fell down, okay, you're out, goodbye, you're not even ISKCON anymore, go. But he did not do like that. So this incident was historically of great importance for future generations to devotees to analyze the mercy of Acharya. It's tricky, very careful, we have to be careful.
हालांकि इन जो व्यक्ति है इन्होंने विवाह कर लिया था परंतु फिर भी श्रीला प्रभुपाद ने इनको अपनी पोस्ट जो जीबीसी थे उससे नहीं हटाया क्योंकि श्रीला प्रभुपाद पूरे करुणा से भरे हुए थे. वे चाहते थे वह ये नहीं चाहते थे कि वह भगवान के प्रति अपनी सेवा से वंचित हो जाएं. हो सकता था कि प्रभुपाद उन्हें बहुत ही कड़े रूप से कह देते थे कि अभी आपका फॉल डाउन हो गया है, अभी आप अपने पद से गिर गए हो, अभी आप जाओ, अभी आप इस्कॉन सोसाइटी के भी नहीं रहे, आप बाहर जाओ. परंतु फिर भी श्रीला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह करुणा के अवतार थे और वे आगे आने वाली पीढ़ियों को एक उदाहरण देना चाहते थे कि एक आचार्य की कृपा का क्या अर्थ है. जो उनका यह डिसीजन था बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन था.
बट व्हेन रिपोर्ट्स वेंट आउट टू द डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड दैट शी वाज ईटिंग चिकन इन द टेंपल एंड अदर डिविएशंस, she tried to enter the deity room in her pajamas. She was so, I thought she was Maharani, you know. I'm serious, I'm not at all joking. She thought she was Maharani.
परंतु जब ये बात पूरे विश्व में फैली कि उस महिला को मांसाहार करते हुए पकड़ा गया और वह जो विग्रहों का कक्ष था उसमें भी एंटर उन्होंने करना चाह बिना किसी वैष्णव ड्रेसेस में, कैजुअल ड्रेसेस में. उन्हें लगा कि वह एक महारानी है.
महारानी मीन्स ग्रेट क्वीन. सो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजंस ऑफ मैडनेस ग्रैंडियर मैडनेस. शी थॉट शी वाज द क्वीन बिकॉज हर हस्बैंड हैड पावर एंड अथॉरिटी ओवर डिवोटीज. सो शी थॉट शी वाज द क्वीन. दिस मैडनेस डिल्यूजन.
तो उन महारानी, महारानी का शब्द है जो अपने आप को बहुत बड़ी कोई रानी समझे, तो इसको कहते हैं पागलपन.
So these reports of deviation reached Srila Prabhupada.
तो जब ऐसे ऐसे बहुत ही गंभीर जो पद से भ्रष्ट होने वाली जो रिपोर्ट्स हैं श्रीला प्रभुपाद तक पहुंची.
News spread all over the movement. In those days there was no mobile phones and no fax machines, but either by telephone or by electronic tape, you know, where the machine, I don't know, I forget what it's called, the machine that you punch, you type on. No, not something like telegram. You type on a keyboard, you would type on a keyboard, it would punch holes in the tape, and then you would run the tape through the machine, and it would send out the message by Morse code. Well, it was cheaper than telephone, so devotees used to use that for international communication. There was no internet. Certainly there was not.
तो इस घटना के बारे में पूरे विश्व भर के जितने मंदिर थे सब में फैल गया. हालांकि उस समय फोन या इंटरनेट नहीं हुआ करते हालांकि उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करते थे परंतु टेलीग्राम के थ्रू या फिर फोन कॉल्स के थ्रू ये बात हर जगह पहुंच गई.
सो इन दिस वे द डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड फाउंड आउट अबाउट दीस डिविएशंस दैट वर गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ द टेंपल.
तो इस प्रकार विश्व भर के अन्य अलग भक्तों ने जो मंदिर के अंदर हो रहे पद भ्रष्ट कार्य को बारे में जानकारी प्राप्त की.
Devotees became very angry. They became very angry. What is this nonsense, you know? This sinful activity is allowed within the temple? Nonsense. They became very angry. Many devotees became very angry. And of course they went to Prabhupada with a massive and a very angry complaint. What is this nonsense?
तो सारे अन्य भक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और वे सारे मिलकर श्रीला प्रभुपाद के पास गए कि किस प्रकार से ये पापमय कार्य मंदिर के अंदर हो रहे हैं.
Then Prabhupada told the local leaders very sternly, why you did not rectify?
श्रीला प्रभुपाद ने उस मंदिर के जो अधिकारी हैं उनको बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, तुमने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया?
Here we see, of course this is an advanced concept and maybe some of you may be spiritual leaders in ISKCON in the future, but I'm telling this because here we have to see the balance between extraordinary tolerance, mercy and when to act swiftly to correct a dharma. So there must be a balance between the two and experienced leaders must learn this. So in this room are sitting some future leaders. We can't say how many, but the fact is that's why I'm telling this principle: tolerance, mercy on the left hand, and power of rectification with a thunderbolt in the right hand. And this is how Prabhupada managed the movement.
तो हालांकि हो सकता है जो इस सिद्धांत की हम चर्चा करें ये बहुत ही उच्च श्रेणी का सिद्धांत है, परंतु फिर भी इस मंदिर के कक्ष में बहुत सारे जो भविष्य में होने वाले नेता बैठे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से एक संतुलन बनाना चाहिए. एक तरफ श्रीला प्रभुपाद ने अपनी बहुत ही अपार करुणा दिखाई और दूसरी तरफ साथ ही साथ बहुत ही कड़े शब्दों में डिसिप्लिन भी किया. तो उसी प्रकार से हर आध्यात्मिक नेता को इस प्रकार का संतुलन बनाना चाहिए कि एक हाथ में बिजली की तरह कड़क और दूसरे हाथ में बहुत ही सॉफ्ट कोमल व्यवहार.
And I assure you that the thunderbolt of Srila Prabhupada is, present tense, more powerful than the thunderbolt of Indra. Because the thunderbolt of Indra is material, and the thunderbolt of Srila Prabhupada is, present tense, spiritual, Ladini Shakti. You see?
So I want to assure you from this fact that when Srila Prabhupada was cut, or when he was speaking like a bell,
तो वह जो इंद्र का अस्त्र है व्रज या उनके हाथ में जो बिजली का जो नियंत्रण है उससे बहुत ज्यादा कठोर हुआ करता था.
So we have taken the subject matter over the issue of the importance of maintenance because the Prabhupada saw a broken harmonia and say, who is taking care of these instruments? Whose responsibility this is? Immediately you would demand to know why this is in this condition. This is the property of Radhika. What is this nonsense? Immediately. That's how I brought the subject matter.
इस बात का जो चर्चा है मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि हमें अगले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार से हम जो भगवान की जो चीजें हैं उनका पाठ करें उनको मेंटेन करें.
So I'm going to read the translation of this verse again. O King Parikshit, King Parikshit inquired from Shukadeva Goswami, O learned Brahmana, demons are generally sinful, being obsessed with the modes of passion and ignorance. How then could Ritasura have attained such exalted love for the Supreme Personality of Godhead, Narayan?
अनुवाद. राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, असुर रजो तथा तमो गुण से आविष्ट होने के कारण सामान्यता पापी होते हैं, तो फिर वृतासुर श्री भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका?
Yes, this question because Shukadeva Goswami had explained that Vritasura was a pure devotee situated in love of Godhead and went to Vaikuntha after being killed by King Indra. And so this is, you could say confusing Maharaj Pariksit saying, but how is it possible that a demon could have such great love of God? So he wants to know from Acharya. It's a natural question. So how could he have love of God if he was a demon? Natural question.
The Shukdev Goswami ne isse pehle ye bataya ki kis prakar Vritasura ek pratham shreni ke bhakt the, shuddh bhakt the, aur Indra dwara mare jane ke baad vah Bhagavad dham ko laut gaye. To Raj Parikshit ko ye sunkar bahut hi aashcharya hua aur ye bahut hi swabhavik prashn hai jo unhone kiya ki kis prakar se ek asur ke andar itna zyada Bhagavad prem anukul hua और वह किस प्रकार से भगवत धाम जा सके, ऐसा कैसे हुआ?
Therefore, next Shukadeva Goswami is going to tell the history of King Chitraketu and how he was cursed by Parvati to become a demon. That's the explanation. So that's what's coming in this chapter.
तो अब Shukadeva Goswami महाराज चित्रकेतु की कथा सुनाएंगे और ये भी बताएंगे किस प्रकार उन्हें पार्वती द्वारा श्राप मिला और वह असुर बना.
Because Mohan Rupa and Radhesham Prabhu and I also previously something discussed that King Chitrakutu was a very exalted devotee of the Lord. We can say he was a pure devotee. It does not mean Mahabhagavat, doesn't mean he had not attained the platform of Krishna Prem, but very exalted, very high devotee. There's no doubt about it.
Maharaj bata rahe hain ki unki इस विषय में थोड़ी बहुत चर्चा हुई राधेश्याम प्रभु और मोहन रूपा प्रभु जी से कि किस प्रकार जो महाराज चित्रकेतु थे वह एक बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त थे. हालांकि महाभागवत उन्हें नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जो कृष्ण प्रेम है वह अनुकूल नहीं हुआ था, परंतु फिर भी वह बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त थे.
Have you read the story, Parasivika?
आपने इस बारे में कथा का श्रवण किया है? पर
you have read the story? Then how do we know that King Chitraketu was a very high devotee? How do we know that? What is the proof from the Bhagavatam?
To Bhagavatam mein se hame kya praman milta hai ki hum keh sake ki Chitraketu Maharaj bahut hi uch shreni ke bhakt the.
Blank. You're blank. Read the story again. You're just now reading a lot, you told me.
तो आप इस कथा को दोबारा से पढ़िए.
Read the whole story again. This chapter now. Then you will understand. All right. Who knows the answer?
आप में से किसको उसका उत्तर पता है?
You know the answer. Yes. Yes, he got the darshan of Shankarshan. First class. Hari Bab! You read the story in Bhagavatam? You heard in class? Yes, very good. This is the perfection of hearing.
Yes, Shravan ki poornta hai.
The perfection of hearing is that you can repeat what you've heard. That's the perfection of hearing. Shravanam Kirtanam. That's the perfection of Maharaj Pariksit. That was the perfection of Suta Goswami.
Shravan ki siddhi hai ki jo humne suna hai usko hum dohra sakein aur isi ko prachar kehte hain.
Suta Goswami, you heard from Shukadeva Goswami?
Sut Goswami ne Sri Sukadev Goswami se shravan kiya.
And he repeated to the sages at Dharmashravanya exactly what he heard from Shukadeva Goswami.
Aur unhone usi tarike se dohraya jo Naimisharanya mein anya sadhu the.
At the same time, that doesn't mean that the style of presentation of Suta Goswami was identical to that of Shukadeva. The message was the same, but the style was not identical. That is not possible because everyone is an individual. So the flavor of presentation by Suta Goswami, though similar, is also different because he is an individual. You see? So this point is, we have to understand. There's always individuality in presentation of Krishna consciousness.
हालांकि उन्होंने उसी चीज को दोहराया परंतु उस तरीके से नहीं दोहराया जो उन्होंने कहने का जो तरीका था वह अलग था क्योंकि हर व्यक्ति हर कोई अलग-अलग व्यक्ति है तो मैसेज सेम हो सकता है परंतु उसको किस प्रकार से कहा जा रहा है वह भिन्न हो सकता है
Shravanam Kirtanam. So this is everyone's perfection. Everyone.
तो यह हर व्यक्ति की स्थिति है कि हम अच्छे से श्रवण करें और उसी चीज का दोहराएं
This was the total perfection of Maharaj Pariksit.
और महाराज परीक्षित की भी यही स्थिति थी
Because he was situated in perfect example. In fact, he is the example that's given of the nine processes of devotional service. Maharaj Pariksit is given as the example of Shravanam. Write that down if you're taking notes, write it down.
जो भक्ति के नौ अंग हैं, उसमें से जो पहला अंग है श्रवण, उनके आचार्य परीक्षित महाराज हैं। तो जो भी नोट्स ले रहे हैं, इस चीज को लिख लें।
You already know that, Nanda Baba? See, you have to be attentive. You have to stay awake. You have to be attentive. You already know. That's why you didn't write it down. What was the question? You lost the question. Yes, very good. Hare Krishna. Jai. So hearing means Shravanam, certainly.
तो इसका अर्थ है श्रवणम
एंड शुक्रदेव गोस्वामी इज द आचार्य मोस्ट परफेक्ट आचार्य ऑफ
सुखदेव गोस्वामी कौन से अंग के आचार्य हैं
पे अटेंशन यू गाइस आर स्पेसिंग आउट कम ऑन शुक्रदेव गोस्वामी इज द परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट यू स्पीक इंग्लिश बाबा डोंट कंफ्यूज Kirtanam, thank you very much. You need more RAM in your computer.
So, आपको अपने कंप्यूटर में ज्यादा ROM की आवश्यकता है. ROM का अर्थ है memory, read only memory.
Computer a little slow, huh? More RAM, offload some rubbish. When the computer gets slow, you offload something, yes?
आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा धीरे चलता है मन है
इफ योर कंप्यूटर इज टू स्लो यू हैव टू ऑफलोड समथिंग यू हैव समथिंग यू डाउनलोडेड प्रीवियसली ओके दिस इज ऑब्सोलीट नाउ सो यू ऑफलोडेड यू पुट इट ऑन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लाइक यू पुट इट बैक इन द मटेरियल एनर्जी द एक्सटर्नल एनर्जी वेयर इट बिलोंग्स अंडरस्टैंड गो
जो कंप्यूटर है अगर उसका स्पीड धीरे हो जाए तो हमें उसमें से जो फालतू की चीजें हैं उसको डिलीट करना होता है या किसी दूसरे डिवाइस में उसका बैकअप लेना होता है उसी प्रकार से जो हमने फालतू के कंसेप्ट सभी भर रखे हैं उसको हमें वापस भौतिक प्रकृति में
यू ब्रो योर नॉनसेंस सच एज इनअटेंटिव हियरिंग बैक इनटू द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव व्हिच इज द एक्सटर्नल एनर्जी ओके
तो हमारे जितने ये
राइट दैट डाउन इफ यू हैवंट रिटन इट डाउन See, I'm training these yellow boys here. They can teach like this in the future. They will. There's no doubt about it. They will teach like this in the future. These examples, as long as there's still computers on the planet, which we don't know how long they're going to last. But anyways.
So, हमें जितने भी हमारे अंदर ये अपूर्णता है कि किस प्रकार से हम असावधान होकर श्रवण करते हैं, ठीक रूप से नहीं करते, तो ये हमें वापस भौतिक जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है उसमें दे देना चाहिए.
सो दिस इज फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बाय महर्ष परीक्षित.
तो ये बहुत ही प्रथम श्रेणी का प्रश्न है महाराज परीक्षित द्वारा.
What was the question, Prabhu? Haribol. What was the question?
The kya prashn pucha Parikshit Maharaj ne?
Yes. How could the demon have become such a great pure devotee? Yeah.
Ki kis prakar se ek asur ek shuddh bhakt ban saka?
Prabhupada says sometimes repetition is necessary, and we prove it here, is it not?
श्रीला प्रभुपाद कहते थे दोहराना बहुत बार आवश्यक होता है और उसका प्रमाण अभी हमने देखा.
सो द आंसर इज रिवील्ड इन दिस चैप्टर ऑन किंग चित्रकेतु.
महाराज चित्रकेतु के बारे में की जो कथा है उसको प्रकट किया गया है इस अध्याय में.
He was indeed a pure devotee of the Lord.
वह भगवान के एक शुद्ध भक्त थे.
He was not a mixed devotee.
वह मिश्रित भक्त नहीं थे.
Mixed means mixed with the modes of material nature.
मिश्रित का अर्थ है प्रकृति के गुणों द्वारा मिश्रित.
Yet he was not complete in his self-realization, even though he he chanted Om Namo Bhagavate Vasudevaya. As far as I recall, he chanted Om Namo Bhagavate Vasudevaya, isn't it?
हालांकि वह पूर्ण रूप से शुद्ध थे, परंतु वह आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सके थे. वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करते थे.
And he attained perfection by chanting that mantra. So we can understand that's a very heavy mantra.
तो हमें जानना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही भारी मंत्र है और इसी मंत्र के द्वारा
Prabhupada gave it for every, he put it back into the harmonium. Why Prabhupada gave it for every class, whether Gita class, Bhagavatam, the invocation, because it's heavy. Bhagavan, Om Namo Bhagavate, Vasudeva. Who are we talking about? Vasudeva.
Srila Prabhupada ne is mantra ko har kaksha mein diya. Jaise Srimad Bhagavatam kaksha se purva hum is mantra ko dohrate hain. Is mantra ka kya arth hai? Om Namo Bhagavate. Bhagavate ka arth hai Bhagwan, Vasudev. Bhagwan Vasudev ke bare mein charcha ki ja rahi
hai. You know, Vasudeva is another name of Krishna.
दूसरे शब्दों में जो वासुदेव है ये कृष्ण का एक दूसरा नाम है.
ओम नमो. सो वी आर इनवोकिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण एज द इनवोकेशन टू डिस्कसिंग हरिकथा.
ओम नमो कि हम भगवान के जो ये दिव्य नाम है उनको पुकार रहे हैं.
दिस इज ऑल्सो हरिकथा. व्हाट वी डिस्कसिंग द स्टोरी किंग चित्रकेतु इज ऑल्सो हरिकथा.
जो महाराज चित्रकेतु के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं ये भी हरी कथा है.
We have been making this point in our seminar. I've been doing some seminars for these gentlemen here.
तो इस पॉइंट को हम कई बार दोहरा चुके हैं अपनी कक्षाओं में.
And that core point that must be downloaded is that hari katha does not mean only braja lila. Otherwise, the whole rest of the Srimad Bhagavatam would be useless and mundane. We have to be very careful not to make offense against the Srimad Bhagavatam, Śrīla Gosvāmī, Sages Dandayamā Śrēṇīya, or Śukadeva Gosvāmī, the original speaker, or Śrīla Vyāsadeva. As soon as somebody thinks the 10th canto is the only real Harikatha, they are offender. You need to know that.
So, jo ye avashyak siddhant hai, isko hume achhi tarah se jaan lena chahiye. ऐसा नहीं कि जो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद है सिर्फ ये हरि कथा है. अगर हम ऐसा मानते हैं तो जो अन्य स्कंद है वे पूर्ण रूप से किसी काम के नहीं रहेंगे और ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध है. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के प्रति हम कोई अपराध ना करें. जैसे ही कोई सोचता है कि दशम स्कंद ही हरि कथा है और बाकी सब हरि कथा नहीं है तो वह एक अपराधी है.
So in the Burbhor Srila Prabhupada is explaining that unless one becomes freed from the modes of material nature, tamagun, rajagun, sattvagun, unless one becomes freed even from sattvagun, then they cannot attain the platform of pure devotional service.
तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने इन गुणों से, अपने तमोगुण, अपने रजोगुण और यहाँ तक कि अपने सतोगुण से भी मुक्त नहीं होता, वह पूर्ण सत में, पूर्ण जो शुद्ध सत है उसमें स्थित नहीं हो सकता.
यहाँ
पे श्रीला प्रभुपाद बहुत ही उदार हो रहे हैं.
Because he's saying, however, unless one conquers these modes and comes to the platform of goodness.
क्योंकि यहाँ प्रभुपाद बताते हैं किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के पद पर नहीं पहुंचता,
there's no chance of one's becoming a pure devotee.
तब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता.
But here Prabhupada's being generous, so why do I say that?
परंतु यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बहुत ही उदार हो रहे हैं.
You know,
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
Why do I say Prabhupada's being generous? At least one should come to goodness, yes.
तो रवि ने उत्तर दिया कि यहाँ पे प्रभुपाद सतोगुण के बारे में नहीं बता रहे कि क्योंकि कोई व्यक्ति ये प्रयास कर सके कि सतोगुण तक पहुंचे.
But what else? I'm driving at something else. What else?
परंतु इसके अलावा क्या क्या रीजन है?
I don't have any pundits here today, I don't think. Yes, what else? I'm driving at something else. Louder. Yes, he's saying we can get through sattvagun transcendental laws. Yes. Okay. Haribol.
तो प्रभु ने उत्तर दिया कि पहले सत्वगुण पे आ जाए और सत्वगुण के बाद शुद्ध सत्व की ओर बढ़ते.
The point, yes. The Brahmabhuta platform which we've been discussing is difficult to attain. Transcendental platform.
जो ये दिव्य पद है इसको सीधा दिव्य पद की तरफ अग्रसर होना ये बहुत ही कठिन है.
The reason I say that Prabhupada is being generous.
तो मैं किसलिए कह रहा हूँ कि श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत उदार है?
Because you cannot attain the platform of pure devotional service even if you're situated in the material mode of goodness. You can't.
क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व के शुद्ध जो शुद्ध सतोगुण है शुद्ध सतोगुण के स्तर पर तब तक नहीं आ सकता जब तक वह सतोगुण से भी मुक्त ना हो जाए.
बियॉन्ड सत्वगुण और द मोड ऑफ गुडनेस देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म.
सतोगुण के पार भी एक और आधार होता है.
व्हाट इज दैट कॉल्ड? Pure goodness, good, good. Okay, Hari Bol.
Shuddh Sattva Kastar.
Pure goodness is beyond the material mode of goodness. And the Sanskrit name, please? Blank. Huh? Shuddh Sattva. Come on, you're out of petrol. Still, I'm telling you, you have to put more RAM in your computer because a little slow. It should be. We have to come to that point where clip, 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 clip. So what is this? What is the Sanskrit for pure, pure goodness? Oh yes, Vishuddhasattva. Boom. You have to become like that if you want to advance.
So, आपको बिल्कुल तुरंत ही उत्तर दे देना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए कि शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्वगुण के ऊपर कौन सा स्तर है, तो तुरंत ही उत्तर दे देना चाहिए शुद्ध सत्व. तो आपको इस लेवल तक पहुंचना है अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो.
So he's a very intelligent young man.
ये निश्चित रूप से बहुत ही बुद्धिमान सज्जन यहाँ पे बैठे हैं.
He probably prides himself in his intellect, most probably.
और हो सकता है इनको अपनी बुद्धि पे थोड़ा गर्व भी हो.
What is your career? Your career? You studied in the school, university. What you studied? Oh, no, your English is good. You speak English, yes? you speak good English, is it not? Then you're looking confused and all of a sudden you want translation. This is what happens when people are under pressure. Oh, translation please, translation please. In the meantime, the mind is going, oh my God, what's the answer? Uh-oh, what is he doing? What is he driving at? Oh, I'm in trouble. The mind is doing that, and actually, translation please.
तो आप निश्चित रूप से एक सज्जन हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, परंतु ऐसा आप फिर भी बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। ये होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही प्रेशर के अंदर हो, तब उसे ट्रांसलेशन की आवश्यकता भी पड़ जाती है।
I asked you what career you studied in university.
मैंने आपसे पूछा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।
Chartered accountant. Does that require a good brain? Tough. It's very tough.
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या अच्छे दिमाग की आवश्यकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है.
Still, you have to put more RAM in your computer. You do.
परंतु फिर भी आपको अपने जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें ज्यादा रोम की आवश्यकता है.
I mean, what is the ROM? You know, ROM is a memory chip, you know.
This mein kya galat hai? Jo ROM hai, woh ek memory chip hoti
hai. I'd like you all to be thinking about this, and this is something I'm giving you the, perhaps you wrote this down before, about all over the world, hundreds of millions of people, maybe even billions, are going to the store and saying, well, what is the RAM nowadays? The top RAM now is how much big RAM you can RAM. They say RAM, but RAM. How much the biggest chip nowadays? Huh? 8 gigs. 8 gigs RAM. The biggest RAM you can get nowadays is 8 gigs.
Yes. तो आप पूरे विश्व में कई लाखों और कई करोड़ों लोग हैं जो रोज दुकानों पे जाते हैं और पूछते हैं आजकल जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का जो रोम है वो क्या है.
He's got 8 gigs but he needs 16 gigs. Put another port in your computer and add another ROM chip. Dual port, okay, for your ROM. So you can add more ROM. They make these with up to 16 gig, I think. At least X, you know, chips you put in nowadays for pen drive, 16 gigs. I just bought one, you know. Hari.
आज कल जो 16 GB की भी pen drives आती हैं, मैंने एक देखी है.
So I just want to make this ecstatic point. That all over the world people are going in so to buy a computer. The service agent says, so how much RAM do you want?
तो पूरे विश्व में कई लाखों करोड़ों लोग रोज दुकानों पर जाते हैं और पूछते हैं कि RAM से.
So man says, I want 8 RAM. Best you've got.
दुकानदार पूछता है कितनी कैपेसिटी की RAM चाहिए. व्यक्ति कहता है I need 8 RAM.
Well, they're getting the full, not partial, benefit of saying RAM.
तो उनको पूरा नहीं, परंतु फिर भी उनको कुछ लाभ मिलता है RAM कहने का.
अरे वाह! The skeptic or neophyte will say, "But Maharaj, he said RAM. He didn't say ROM."
परंतु कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि महाराज उनको क्यों लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो रैम कहा है ना कि राम.
For this you have to go to Chaitanya Charitamrita and see the conversation between Mahaprabhu Haridas Thakur ki jai.
तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के बीच में वार्तालाप का.
It doesn't matter if the name is mispronounced. Not at all. If the syllables are there, even if the syllables are interrupted by another syllable in between, still it counts. That's the Haridas Thakur explains that to Mahaprabhu, because he's the puppet and Mahaprabhu is playing him, you know, like an MP3 player. He's playing him for his pleasure. And it is Leela, first class.
तो हालांकि यहाँ पे जो उत्तर है श्रीला हरिदास ठाकुर दे रहे हैं, परंतु उनको श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक लीला हो रही है। तो वह बताते हैं कि हो सकता है कोई नाम गलत रूप से ले, परंतु अगर वही अक्षर प्रस्तुत हैं तो भी लाभ मिलता है।
It's not that Mahaprabhu didn't know the answer, obviously.
ऐसा नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तर नहीं पता था।
He's Radharani, means he's Ladini Shakti. So under Ladini Shakti, the internal potency, he wants to inquire why. Why he's inquiring? He's the Supreme Personality of Godhead. He's Bhagawan. Why he's inquiring from his devotee?
वह लादनी शक्ति के अंदर थे, इसलिए वह अपने भक्त से पूछना चाहते थे। कोई मना पूछ सकता है कि भगवान तो भगवान है, कि उनको क्या उत्तर नहीं पता था, वह क्यों अपने भक्त से पूछ रहे हैं?
What's the answer?
इसका क्या उत्तर है?
Blank.
कि भगवान अपने भक्त से पूछ रहे हैं।
All right, what's the answer? He is asking the question on behalf of us, yes. Good. What else? Something else.
Soji bata rahe hain ki vah bat jivo ke taraf.
Ah, very good. Ariba. He wants to glorify his Nitya Siddha devotee. That's the fact. Soji
ne bilkul sahi uttar diya ki Bhagwan apne jo unke Nitya Siddha bhakt hain, unka gurgaan karna chahte hain.
He wants the credit to go to his Nitya Siddha devotees.
Vyavani ko श्रेय प्रदान करना चाहते हैं।
There's one purport where Prabhupada writes regarding this issue of yada yada hi dharmasya glane bhavara bharata abhyutanam adharmasya tada maram sudamya. Wherever and wherever there's a predominant rise of irreligion, at that time I advent myself, Krishna says.
तो श्रीला प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य के श्लोक में।
So, not necessarily in that purport to that shloka, but other places where he's discussing this point, Prabhupada writes, Krishna has kindly left it to this International Society for Krishna Consciousness. Very heavy statement.
तो इस श्लोक के तात्पर्य में नहीं, कई अन्य श्लोकों के तात्पर्य में भी श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान कृष्ण है उन्होंने ये कार्य इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को सौंपा है।
So in this way credit goes indirectly, he's declaring that he's going to be given the credit for it, but Vaishnava cannot say like that, but ISKCON is Prabhupada's body.
इस प्रकार से श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को जाता है, क्योंकि जो ये संस्था है वह श्रीला प्रभुपाद का शरीर है।
What is the glories of the holy name, glories of the mood? This we see the glory, how the Supreme Lord wants to give glories to his pure devotee. He wanted to give the honor to Chitiketo.
भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान, भगवान की महिमा का गुणगान।
All right, anyone have any questions?
आप में से किसका कोई प्रश्न है?
Loudly, please.
Maharaj,
loudly.
Maharaj, very wonderful class you have given. Very wonderful class you have given.
Thank you.
And while you were instructing us, I was thinking like Lord Rishabhdev is instructing his sons. Like that you are training your sons and it was like this.
What the Lord appears. You were remembering Lord Rishabhdev, Lord Rishabhdev from the fifth canto. You have read the fifth canto. You heard in class how Lord Rishabhdev was training his sons. Thank you very much. Hare Rama. Because that's a very high compliment, but the principle is the same. There's no doubt about it.
So, ये बहुत ही उच्च श्रेणी का जो मैंने प्रशंसा की महाराज की, परंतु हमें जानना चाहिए कि जो सिद्धांत है वह सेम है.
This is called parampara. It is not that I am on the same level as Lord Rishabhdev. That cannot be.
इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मेरा स्तर है भगवान ऋषभदेव का है, ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता.
But that is a achintya bheda tattva, you know.
तो ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है.
You know why I would say that?
आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा?
Yes, Prabhu. I'm not Mahabhagavat. Somebody could say I'm pure devotee. I can't say. Somebody else might say. Because I'm following Acharya.
अचिंत्य भेदा भेद का जो अर्थ है कि एक साथ भिन्न और अभिन्न होना. तो यहाँ पे हालांकि आप भगवान नहीं है, परंतु फिर भी जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो संदेश है उसको यथारूप प्रस्तुत करते हैं.
It's under the principle of sakshadri dvena samasya shastri. Every day you're singing. That is the principle of that shloka of Vishnu Chakravarti Thakur. So I am also, I'm not initiating guru at this present moment, technically, but I'm also guru. What is it? Guru simply means teacher in the science of Krishna consciousness, not teacher of auto mechanics, or not teacher of esaraj, but teacher of the absolute truth. Who has also heard from bona fide guru, that is guru. That's all. Whether
तो यहाँ पे जो सिद्धांत है वह साक्षाधरी देना समस्त शास्त्र, जो हम रोज गुरु अष्टकम में कहते हैं. हालांकि मैं दीक्षा नहीं देता, परंतु फिर भी मैं गुरु हूँ, क्योंकि गुरु का साधारण शब्दों में अर्थ है जो भगवान की जो ये भक्ति का जो विज्ञान है इसके बारे में अगर कोई सिखाए, कोई शिक्षा दे. गुरु का अर्थ ये नहीं है कि कोई ऑटो मैकेनिक सिखाए.
एनीथिंग एल्स? यस.
Krishna Maharaj ji, you are telling that Chitraketu was an exalted devotee, but still he was not Mahabhagavat. He was an exalted devotee, but he didn't have full love of Godhead. So can you explain that he was an exalted devotee, but still he did not have full love of
Godhead? He was a pure devotee. King Chitraketu was a pure devotee. He had attained love of Godhead. Then how did this, you could say, disaster happen to him? Mahabhagavat, maybe there's a fine line there. The point is he was not Nityasiddha. The point is he had not attained the plane of Prema Bhakti. That is my point.
So, the Prabhuji ka prashna hai, ki Maharaj, jaise aapne apni kaksha mein bataya, ki jo Maharaj Chitraketu the, वह बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त थे, परंतु वह सिद्ध भक्त नहीं थे. तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका आप थोड़ा व्याख्यान कर सकते हैं? तो महाराज ने उत्तर किया कि यह बहुत ही पतली रेखा है एक बहुत लाइक उच्च श्रेणी के भक्त होने में और सिद्ध होने में. यहाँ पे जो महाराज चित्रकेतु थे वह माँ भागवत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रेमा भक्ति का जो स्तर है उसको प्राप्त नहीं किया था.
He had probably attained the platform of bhava, which intermediary love of God. And from the position of bhava, this was being discussed by Mohan Rupa Prabhu.
उन्होंने जो भाव का स्तर प्राप्त कर लिया था, भाव के स्तर से जो अगला स्तर होता है वह प्रेम की तरफ जाते हैं. तो ये इसके मोहन रूपा प्रभु जी ने अपनी कक्षा में.
From the position of bhava, you have a flash darshan. With the Supreme Lord.
जब कोई व्यक्ति भाव की स्थिति में होता है तो उसे क्षणिक दर्शन प्राप्त होता है भगवान का.
From the position of Krishna Prem or Vishnu Prem, it is permanent. That is one of the distinctions.
और जब किसी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वह शाश्वत रहता है, वह वहां से गिर नहीं सकता. तो ये अंतर है दोनों स्तरों में.
So, Mohan Rupa was making this point. Bharat Maharaj also had attained the platform of bhava, it seems.
Mohan Rupa Prabhuji apni kaksha mein bata rahe the ki jaise Bharat Maharaj hain vah bhav ke star pe the.
So until we develop full and complete love of God, Krishna Prem,
jab tak hum
because we are marginal energy, there is still some risk of fall down. So, even one attains a platform of bhava, there's still some risk. And that's shown in the story of Chitraketu Maharaj, as shown in the story of Bhart Maharaj.
जब कोई भाव के स्तर पे आ जाता है वहां से भी वह नीचे गिर सकता है यह हमें पता चला भरत महाराज की कथा से और चित्रकेतु महाराज की कथा से
Okay, we'll stop there. जगत गुरु सर्वोबारी की जय गिरिराज गौरांग की जय श्री श्री राधा बारव राधा श्याम सुंदर गिरिहर गोपनाथ गिरिहर गंधर्वक की जय श्री श्री कृष्ण बलराम हरि क्रमांगी जय नित्य गो प्रेमानंदी हरि हरि बोलो
भक्ति माधुरी गोविंद महाराज की जय